समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मृत्यु तो सबकी होनी है, चाहे वो भगवान को याद करता है या याद नहीं करता है, चाहे सेवा साधना और सत्संग में रत रहता है या फिर जीवन में मौज मस्ती करता है। तो जब मृत्यु सबकी होनी ही है तो फिर ये सेवा सत्संग या साधना की आवश्यकता क्यों है? गुरुजी ने इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया था मित्रों, लेकिन ये जवाब मैं अंत में आपको दूंगा इस कार्यक्रम के। तब तक आप भी इस पे विचार कीजिएगा और आज इसी प्रश्न से ही हम शुरुआत करेंगे। प्रातः जी से ये प्रश्न पूछेंगे। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं, उनको ओम शांति कहते हैं। प्रातः जी ओम शांति। प्रातः जी, ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न पूछा है किसी ने, मतलब शिष्य ने अपने गुरु जी से ही पूछा, लेकिन बहुत ही कई बार ऐसा लगता है कि यदि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, इन सब चीजों में भी अपना जीवन लगा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? एंड रिजल्ट तो वही है।
आजकल के सभी युवक शायद यही प्रश्न पूछें कि क्या जरूरत पड़ी भगवान को बीच में लाने, ठीक है ना इधर। लेकिन ये जीवन एक लंबी यात्रा है
जी,
और इसमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, सफलता असफलता सब मनुष्य को मिलती है। जब हम अच्छे होते हैं, अच्छे व्यक्ति, और अच्छा व्यक्ति कोई जन्म से ही संस्कारों से भी होता है, तो कोई सत्संग से बनता है, कोई साधनाओं से बनता है, मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित करता है, तो इस जीवन की यात्रा पर उसको सुख मिलता है, उसको सफलता होती है। और सबसे बड़ी चीज के आज जीवन की यात्रा में चैलेंजेस बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। उन चुनौतियों को स्वीकार करना, उनको फेस करना, उन्हें पार करना, ये सामर्थ्य आती है साधनाओं से। इसलिए जीवन को सरल बनाना है तो साधनाएं भी आवश्यक हैं, आध्यात्म भी आवश्यक है। मान लो कोई व्यक्ति इन चीजों में विश्वास नहीं करता, वो सोचता है खाना पीना, मौज करना, घूमना फिरना, तो न तो वो व्यक्ति पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ना भी स्वयं में एक बड़ी साधना है, उसमें भी बहुत अच्छी एकाग्रता की, लगन की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति ये सब कुछ न करे तो वो गंदी आदतों का शिकार हो जाएगा, व्यसन उसे अपने कब्जे में कर लेंगे, और फिर हम देखते हैं जीवन मनुष्य का कैसा हो जाता है। इसलिए इन चीजों की, चाहे सत्संग हो चाहे साधना हो, मतलब लक्ष्य है कि मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, ताकि वो जीवन भर सुखी रहे, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहे, परिवारों में भी उसके प्रेम रहे, उसके अपने जीवन में भी बहुत खुशी रहे। इसलिए इन चीजों की परम आवश्यकता है आज के संदर्भ में तो खास।
जी 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 जी। लेकिन शायद जो मौज और आनंद की परिभाषा है वो शायद आज बदल गई है, या उसकी समझ बदल गई है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सब जो है सेवा है, सत्संग है, साधना है, ये सब तो अध्यात्म और धर्म के मार्ग हैं, और ये सूखे रूखे हैं, यहाँ मौज मस्ती नहीं है या आनंद नहीं है। मौज मस्ती तो इधर है, संसार को देखने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, तो ये शायद आनंद की परिभाषा बदल गई है।
हाँ, आनंद की परिभाषा टोटली बदल गई। मान लो एक व्यक्ति आनंदित होता है बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने में
जी।
अब वो होटल में जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, वो खूब खूब खाता है, लेकिन अगले दिन उसका उल्टान हो जाता है, उसको उल्टी होने लगती है। तो खाने में तो उसने आनंद लिया, लेकिन बाद में जो उसको परेशानियां हुई वो उस आनंद का ही परिणाम था। आनंद एक बड़ी सूक्ष्म अनुभूति है, सुख एक बहुत सूक्ष्म अनुभूति है। देखिए, सुख तो एक बच्चे को अच्छा खिलौना मिल जाए वो भी सुखी रहता है
जी।
व्यक्ति को सोने को अच्छा स्थान मिल जाए, सुख के दिन सोता है। खाने को, रहने को, सब कुछ अच्छा हो तो वो सुखी अपने को महसूस करता है। लेकिन एक सुख आत्मिक सुख है जो इन सब से बहुत बढ़कर है, जिसमें आत्मा बहुत तृप्त हो जाती है, जिसमें आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। मौज भी वही चीज है कि ये जो मौज है सांसारिक, ये क्षणिक है। इसमें इस शब्द पे ध्यान देना चाहिए, चाहे किसी भी चीज की मौज है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। लेकिन अगर परमानेंटली हमें आनंद की आवश्यकता है तो अध्यात्म की शरण में जाना ही पड़ता है, और वो आनंद बहुत गहन अनुभूति है जिसमें हमारा अंतर चित्त प्रफुल्लित रहता है, जिसमें बाह्य रोग शोक दुख दर्द का इफेक्ट हम पे नहीं होता है, इसलिए सच्चा आनंद वही।
लेकिन शायद ये वाला मार्ग थोड़ा सा कठिन लगता है, जो ये अध्यात्म का मार्ग है, साधना का मार्ग है, ठीक है शायद उसके माध्यम से हम उस परम आनंद तक पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन रास्ता है और थोड़ा सा रूखा सूखा भी लगता है आज के दौर में। एंड सेकेंड, ये वाला जो है ये सहज लगता है, इजीली अवेलेबल है, सब प्राप्त है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो यहाँ जाना, ये टेस्ट करना ज्यादा सहज लगता है।
कठिन तो नहीं है, लोगों ने इसको कठिन बना दिया था, लोगों ने इसको कठिन समझ लिया था। रही बात उस आनंद की, आजकल हम जहाँ तहाँ देखते हैं कि उस आनंद को पाने के बाद, कुछ समय पाने के बाद, उससे मनुष्य इतना उलझ जाता है कि वो आनंद सदा के लिए उसका समाप्त हो जाता है और वो फिर आनंद की खोज में इधर उधर भटकता है। मान लीजिए बहुत लोग विकारों में, विषय वासनाओं में, काम वासना में आनंद ढूंढ रहे हैं, ठीक है उन्हें क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, लेकिन अंततः उनके शरीर में कई रोग लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बुरा कर्म करके और बुरी लत में फंस जाते हैं और इससे जीवन बिगड़ जाता है। जैसे आज ही सवेरे एक फोन आ रहा था, अभी बड़ी दयनीय स्थिति भी थी कि एक पुरुष है जिसकी अपनी पत्नी, 3 बड़े बच्चे, लेकिन वो किसी और के साथ लग गया है, अब बिल्कुल वहां से हटाए नहीं हट रहा है, और जो उसे उसके बारे में कुछ कहे वो उसका परम शत्रु है, उसको मारने के लिए तैयार रहता है। सबको पता है, परिवार को, बड़े बच्चों को पता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए वो आनंद की खोज में उधर गया है, लेकिन अभी उसको इस चीज का एहसास नहीं है, थोड़े दिन में वो अपना सब कुछ लुटा के वापिस आ जाएगा, तब उसकी इज्जत जो नष्ट हो चुकी है वो होगी नहीं, तब उसको बड़ी आत्मग्लानी होगी। तो कठिन तो वो भी है, बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें भौतिकता है, उसमें देह अभिमान की बातें हैं। अध्यात्म का मार्ग कंपेरेटिवली सरल है, आज तक उसको लोगों ने जटिल बनाया हुआ था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फिलोसॉफी का सब्जेक्ट बड़ा ड्राई सब्जेक्ट हुआ करता था, यहाँ हमने आके देखा इट्स ए ग्रेट एंजॉयमेंट, फिलोसॉफी में तो बहुत आनंद है, इसने तो हमारे मन को आनंदित कर दिया, आनंद से सराबोर कर दिया है। तो वास्तव में ये केवल अपने विचार हैं आज तक जो बने हुए थे। ये अवश्य है कि भौतिक सुख, सांसारिक सुख वो सहज भी मिल जाता है
जी,
बहुतों के पास है भी, और ये जो आध्यात्मिक सुख है, ये जो साधनाओं का, सेवा का सुख है, इसमें मनुष्य को थोड़ी इंतजार करनी पड़ती है, पर सेवा तो सचमुच बहुत बड़ा सुख है। हम देखते हैं क्योंकि हमारा जीवन सेवाओं में भी था, सेवाओं के बाद कोई कामना नहीं कि भाई सेवा की है तो हमें यहाँ से कुछ मिले, निष्काम भाव से सेवा की जाती है। एक प्यासे को भी मनुष्य पानी पिला दे, कुछ गरीब लोगों की मनुष्य मदद कर दे, हॉस्पिटल में बहुत दुविधा में परेशान लोगों को आर्थिक मदद कोई कर दे, उसका जो सुख है वो बड़ा अनुपम है
जी,
उसको शब्दों में बांधा भी नहीं जा सकता, वो भौतिक सांसारिक विषय वासनाओं के सभी सुखों से बहुत बढ़कर है
जी, इसीलिए नाम शायद उसको सेवा दिया गया है। लेकिन जैसे आपने कहा ना व्रता जी कि हम जब फिलोसॉफी का जो सब्जेक्ट है बड़ा ही ड्राई सा सब्जेक्ट माना जाता रहा है, और हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा एक चित्र है कि जो फिलोसोफर होता है, बाल लंबे चौड़े, दाढ़ी बढ़ी बढ़ी, ऐसे ही दुनिया से
घूमते भी नहीं कभी
दुनिया से घूमते, तो लगता है अरे यार ये क्या लाइफ है, लाइफ तो ये है बन ठन के चलो मस्त आनंद करो। तो शायद ये जो छवि बनी है ना फिलोसोफर की या फिलोसॉफी की, अध्यात्म की, शायद इसलिए भी व्यक्ति थोड़ा विमुख होता जा रहा है।
हाँ, ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों के साथ भी होता है
जी।
तो वैज्ञानिक भी कई ऐसे रहते हैं और इसका कारण एक ही होता है कि अपनी ब्रेन की संपूर्ण शक्ति एक दिशा में
देते।
कहानी है ना कि भाई कंडक्टर ने टिकट मांग रहा था, अब बेचारा साइंटिस्ट बैठा था, वो घड़ी घड़ी देख रहा, आइंस्टीन की बात है, घड़ी घड़ी देख रहा, टिकट तो पता नहीं कहाँ चला गया। कंडक्टर कहे सर मैं जानता हूँ आपने टिकट तो लिया ही होगा, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन हमें तो जरा दिखा दो, क्या मैं घूम के आता हूँ आप जरा ढूंढ लेना। अभी वो बेचारा उसके नीचे ढूंढ रहा था अपनी सीट के झुक के नीचे, फिर कंडक्टर आया कि सर मिला या नहीं मिला, कि यार मिलने मिलने की तो बात छोड़ो, मुझे तो इसलिए टिकट की तलाश है कि मुझे ये भूल गया मुझे उतरना कहाँ है। तो ये ऐसी बात है, ये लोग अपनी सारी एकाग्रता एक तरफ कर देते हैं ना,
जी,
खाने पे भी ध्यान नहीं, बालों पे भी ध्यान नहीं, स्नान पे भी ध्यान नहीं, कपड़े फटे हुए जो चप्पल पहन के चल दिए, उल्टी पहन के चल दिए, तो फिर लोग बताते हैं अरे सर चप्पल उल्टी है इसे तो सीधी कर लो, धरती पे बोझ पड़ रहा है, तो अरे चप्पलें उल्टी है क्या। तो सत्य फिलोसफी में ये बात है कि हम लोगों को शिव बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया, और ऐसा ज्ञान जो सारी संसार की फिलोसफीज को इकट्ठी करो वहाँ है ही नहीं वो, लेकिन हम लोगों का जीवन बहुत सुंदर है, प्राण से भरा हुआ है, फिलोसफी ड्राई सब्जेक्ट नहीं रहा, बल्कि उसके चिंतन ने हमारे चेहरों पर रौनक ला दी।
बिल्कुल, यहाँ देख के तो ऐसा लगता है व्रता जी, जो भी श्वेत वस्त्रधारी हैं, चाहे भाई हैं बहने हैं, उनके जीवन को देख के लगता है कि रियली अध्यात्म बहुत ही ऊंची चीज है, और सचमुच कितना निखार है जीवन में, व्यवहार में, वाणी में, सब चीजें। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे व्रता जी, जैसे यूथ की ही बात चल रही है, उधर वो सोचते हैं सब कुछ है, यहाँ अध्यात्म में कुछ मजा नहीं है, कैसे सिंपली आप उन लोगों के सामने जो बातें रखना चाहेंगे कि हाँ यहाँ पे जीवन का जो है संपूर्ण आनंद है, किन शब्दों में रखना चाहेंगे?
इंडियन फिलोसॉफी को लें
जी,
मैं कौन हूँ इसके बारे में चिंतन होते रहे, किसने कहा ये हूँ, किसने कहा ये हूँ, किसने कहा मन हूँ, किसने कहा बुद्धि हूँ, किसने कहा नहीं पूरे शरीर में आत्मा फैली हुई है, किसने कहा यहाँ रहती है, किसने कहा हार्ट में रहती है
जी,
किसने कहा एक ही आत्मा है सबके अंदर, अलग अलग है ही नहीं, किसी ने कहा तो अलग अलग है, इसमें उलझ गया मनुष्य। तो इसके बाद जो चिंतन होता है वो सुलझा हुआ नहीं जी होता, दिस इज राइट और दिस इज राइट। हमें स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया तो हमें उलझने की जरूरत नहीं थी, उसने सीधा बता दिया तुम आत्मा यहाँ रहती हो, सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हो, मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं, तुम उनसे अलग नहीं हो, वे तुम्हारी शक्तियां हैं, तुम ये देह धारण करती हो, ये देह अलग है और तुम अलग हो, परमात्मा तुमसे अलग है। क्लियर कंसेप्शन एक 15 मिनट में इन सब बातों के बारे में हमें मिल गई, लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। और फिर जब हमें कहा गया नाउ बी सोल कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियसनेस में बहुत आनंद आने लगा, डीप साइलेंस होने लगी, परम सुख मिलने लगा। आज तक क्या हुआ, फिलोसॉफी अलग थी, साधनाएं अलग थी, शिव बाबा ने आकर दोनों को जोड़ दिया, जो फिलोसॉफी है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तो वही चीज आनंद का विषय बन गया। तो बस सिंपल बात यही है कि मैं आत्मा हूँ।
एक और चीज व्रता जी, मुझे ये बात लगती है कि शायद ये सिंपल बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, या उनकी उनके ध्यान में नहीं दी जा रही हैं, ये अवेयरनेस नहीं है, तो शायद इस ओर व्यक्ति बढ़ता ही नहीं कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास आनंद के लिए, सुख के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। तो शायद ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से, इसीलिए लोग जो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उस ओर बढ़ रहे हैं। इस विषय पे क्या कहेंगे?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक तो लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है, दूसरी मैं पहली बात में एक बात और जोड़ देता हूं
जी,
जब किसी से साधना करने की बात कही जाती थी तो वो ये सोचता था कि ये बहुत कठिन चीज है, पता नहीं क्या करना होगा। लेकिन जब हमें साधनाओं का सच्चा मार्ग मिला तो हमने पाया कि साधनाएं तो बड़ी सरल है, वो तो नेचुरल है, जैसे और चीज हमारे पास नेचुरल है, हमने चश्मा पहना है नेचुरल है, इतना नेचुरल है कि हमें ये बुरा भी रहता है कि हमने चश्मा पहना है क्या, हमारी आंखें हैं ठीक है, हम इनके द्वारा देख रहे, इतना नेचुरल देख रहे हैं कि हमें इस अवेयरनेस की जरूरत ही नहीं कि हम आंखों से देख रहे हैं, बस इसको जरा सा इतना कर देना है कि इन सब के पीछे मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग, असली तत्व तो मैं आत्मा हूँ। तो इससे बिल्कुल इजी हो रहा है, और अब ये अवेयरनेस सारे संसार को दी जा रही है कि तुम सच्चा आनंद और सच्चा सुख इस राजयोग की साधना में प्राप्त कर सकते हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल बुराइयों को, विषय विकारों को छोड़कर तुम इस अध्यात्म के मार्ग पर आ जाओ, तो वो चीजें जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसकी तुम्हें जीवन में तलाश है, जिसके लिए तुम धन कमा रहे हो और वो उसके पीछे फिर भी भाग रहे हो, यानी वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रही है, अगर अध्यात्म के पथ पर आ जाओ तो वो सब चीजें तुम्हारा जीवन बन जाएंगी, उनके पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अवेयरनेस हम सारे संसार को दे रहे हैं, और जैसा कि मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ और शिव बाबा ने जो कुछ उस बारे में बताया है इसी दशक में, ये आध्यात्मिक लहर इस धरातल पर पूरी तरह फैल जाएगी।
चलिए वो शुभ दिन सचमुच हम सबको इंतजार रहेगा कि जल्दी से जल्दी आए। ब्रता जी, एक विशेष चीज, जैसे आपने कहा कि आध्यात्म से ये सारी चीजें मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में ये भावना है कि अध्यात्म मतलब इन सब चीजों को छोड़ना, तो ये भी एक शायद भ्रांति ही है व्यक्ति की कि इन सब चीजों को छोड़ना और गेरवे वस्त्र पहन लेना या सिंपल जीवन जीने लगना, इसे व्यक्ति आध्यात्म और धर्म मानता है। इस विषय पे आपसे
बिल्कुल, अब हम ये सबको साफ बता ही देना चाहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा परम पिता है, और वो पिता ये नहीं चाहता कि सब जंगल में चले जाएं, फिर तो जंगल भी एक शहर बन जाएगा ना। तो वो ये चाहता है कि तुम उन बुराइयों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे कष्ट हरे हैं, और तुम यहीं रहो, यही काम करो, अपनी स्टडी करो, एग्जाम दो, अच्छी नौकरी करो, इसी कार्य में रहो, लेकिन तनाव मुक्त रहो, अच्छी एकाग्रता में रहो और अच्छी एक सफलता की ओर अध्यात्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी सफलता भी तुम्हें बहुत सुख देगी। अन्यथा क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा स्टूडेंट जिसने बीई किया, लास्ट ईयर में एक कंपनी उसको सेलेक्ट कर लिया, अभी एग्जाम होते ही वो कंपनी में अपॉइंट हो गया, लेकिन कंपनी में उसके साथी अब उसे ईर्ष्या करते कि अरे इसकी रैंक बहुत हाई है, अब इसका मान हो जाएगा, अब ये आगे निकल जाएगा, अब ये हमारा अधिकारी बन जाएगा, तो उसकी लाइफ पुलिंग चालू हो गई। अब उसे ये पता नहीं अब क्या करना, अब उसके कोर्स में तो ये सब बातें थी नहीं, उसके कोर्स में तो ये था कहाँ क्या करना है। चलो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, भाई फलानी फलानी मशीनों पर क्या क्या ध्यान देना है, कैसे उनको ऑपरेट कराना है, ये उसे पता था। तो अब ये जो चीज है इसके अभाव में उसको कठिनाइयां शुरू हो गई, उसका मन विचलित होने लगा, वो अशांत रहने लगा, वो टेंशन में रहने लगा। यही बात एक दूसरे विद्यार्थी के साथ है जो अध्यात्म को साथ लेकर चल रहा है, बीई उसने किया, सिलेक्शन हुआ, कंपनियों में चला गया, वही उसे फेस करना पड़ा कि जो पुराने थे सीनियर वो इन जूनियर्स को सताने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे, कमेंट्स करने लगे, लेकिन इसके पास स्पिरिचुअल पावर थी और वो जानता था कि दे आर ऑल सोल्स, कुछ नहीं, दे आर प्लेइंग देयर ओन पार्ट्स, मैं भी अपने पार्ट को एंजॉय करूंगा। ये बहुत लाइट था कि सीनियर जूनियर के लिए ये किया ही करते हैं, कोई बात नहीं, हम भी बहुत जल्दी सीनियर बन जाएंगे, वो मुस्कुरा के हर बात को समाप्त कर देता था और वो सबसे आगे निकल गया, उसका जीवन आनंद से भरपूर हो गया। तो अध्यात्म को हमें साथ में इस तरह लेकर चलना होता है,
मतलब अध्यात्म आर्ट ऑफ लिविंग है कि जीवन कैसे जिया जाए। मुझे लगता है बेटा जी, धर्म और कर्म को शायद हमने अलग कर दिया है आज के दौर में। अध्यात्म अलग है कि हाँ सुबह हमने पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में चले गए या गिरजाघर में चले गए, गुरुद्वारे में चले गए, ये हो गया हमारा एक पार्ट धर्म, अब हम कर्म के फील्ड में आएंगे, तो शायद हमने अलग अलग कर दिया है, लेकिन एक करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है।
बिल्कुल, इसी की जरूरत है, इसी को हम कर्म योग कहते हैं
जी,
जिसमें कर्म धर्म से जुड़ जाता है, हमारे कर्म धर्म के अनुकूल होने लगते हैं, हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाने लगता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए समान रूप से जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाता है।
जी जी, एक और मान्यता पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमने युवाओं से शुरुआत की थी कि भाई चलो मौज मस्ती की हमारी लाइफ है, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि 60 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, उसके बाद धर्म और आध्यात्म का पाठ शुरू होता है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने घूमने फिरने के दिन हैं। इस मान्यता पे आप क्या कहें?
बिल्कुल सीधी सी बात है, देखिए आज तक वो महापुरुष जिन्होंने संसार को नई दिशा दी है सब युवक थे। अब से ले लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, हमारे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब बड़े आचार्य, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाले
जी,
युवा काल से उस फील्ड में परफेक्ट हुए, भले कोई लंबी आयु भी जिया हो, लेकिन जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो उनका युवा काल था, इसलिए वो बहुत परिपक्व हुए। साधनाओं का मार्ग ऐसा है, इसमें मनुष्य के ब्रेन को भी बहुत हेल्दी होना चाहिए, और जब मनुष्य युवक है तब उसका ब्रेन बिल्कुल स्ट्रांग है, हेल्दी है, तब वो अच्छी साधनाएं कर सकता है। उसके संस्कार भी अभी सॉफ्ट हैं, उनको समय अनुसार बदला जा सकता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, देखिए एक व्यक्ति 70 साल का हो गया, 70 साल की आयु तक क्या होता है, उसका मन इतनी चीजों में भटक गया है कि यदि वो साधनाओं में एकाग्रचित होकर बैठना चाहे तो नहीं बैठ पाएगा। उसका मन मनोविकारों में इतना लिप्त हो गया होता है कि 80 साल के बूढ़े भी पूछते हैं कि इन विकारों को कैसे छोड़ें, तो छूट ही नहीं रहे हैं, एकाग्रता नहीं होती। उनके संस्कार इतने जटिल हो गए होते हैं कि उन्हें सॉफ्ट करना बहुत कठिन काम होता है, और छोटी आयु में ये सब सहज किया जा सकता है। हम लोग अपने अनुभवों से भी जानते हैं, जो साधनाएं हमने युवा काल में कर ली, आज हम चाहें कि वो साधनाएं हम कर लें, पहाड़ियों पे चले जाएं, बैठ जाएं 4-4 घंटे, संभव ही नहीं होता है।
जी जी।
तो इसलिए युवा काल हर चीज के लिए परफेक्ट पीरियड है ना, तो उसमें अपने सांसारिक कार्यों में भी हमें परफेक्शन लानी चाहिए और साथ साथ अध्यात्म को भी अपने जीवन से जोड़ देना चाहिए।
कई ऐसे पेरेंट्स हैं रहते जी, जिनके बच्चे जो हमारे पास मेल्स आते हैं या फोन कॉल्स आते हैं, जिनके बच्चे जब इस मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, तो पेरेंट्स या उनके बड़े ही अवरोध पैदा करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये कहाँ जाने लगे तुम, अभी तो तुम्हें करियर बनाना है अपना, तुमको जीवन जीना है, संसार में आना है, देखना है, ये सब बाद की बात है, अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है। अवरोध पैदा करने लगते हैं या एक हद तक जाने देते हैं, उससे आगे यदि वो बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ने देते। तो यहाँ इन जो पेरेंट्स हैं या फिर बड़े हैं जो अध्यात्म को ये समझते हैं शायद कि ये विरक्ति का मार्ग है, उनके लिए क्या कहेंगे?
पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे युवकों को अपने माँ बाप को कहना चाहिए, आपका तो युवा काल बुरा हो गया, आपने संसार में वो सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए, पहले आप तो अध्यात्म के मार्ग पे चलो, चलो हम जैसे भी है करेंगे,
पहले
आप चल लो। तो उन्हें उत्तर जो मिलेगा उससे उनकी समझ में आ जाएगा कि नो, प्रेजेंट पीरियड इज द बेस्ट पीरियड फॉर एवरीथिंग। तो माँ बाप को समय लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवकों को तो अध्यात्म की बहुत जरूरत है, और भगवान तो युवकों का आह्वान कर रहे हैं प्योरिटी के लिए कि आओ इस संसार को, इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए तुम सब मुझे प्योरिटी का सहयोग करो, मेरे कार्यों में मदद करो। तो ये समय की डिमांड है। ठीक है, आज से पहले ये कहना ठीक था कि भाई चलो बड़े होकर ये सब काम करेंगे, लौकिक जिम्मेदारियां निभा लो, लेकिन अब समय और कुछ मांग कर रहा है। ये युग परिवर्तन की बेला पर हम आकर खड़े हो गए हैं, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, और इसमें तो स्वयं भगवान सबका आह्वान कर रहे हैं, और जो भगवान के आह्वान पर कूद जाएंगे, उनके आह्वान पे भगवान भी तुरंत आ जाएंगे, ये वरदान उन्हें प्राप्त हो जाएगा।
तो ये सब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं व्रता जी? बहुत ही सुंदर बात लगती है कि सचमुच यदि हम भगवान के लिए कुछ करेंगे, और ये हमारा भाग्य है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है लोगों को?
इसलिए कि भौतिकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है, विषय वासनाओं की गंदगी संसार में बहुत फैली हुई है। हर माँ बाप यही चाहता है उसके बच्चे भले उससे लड़े, बहू आके घर में भले नाक में दम कर दे, उन्हें घर से निकाल दे, तो मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके युवक यदि देवत्वों के मार्ग पे चलना चाहते हैं, आपके बच्चे यदि पवित्रता का दान इस महान भारत भूमि को देना चाहते हैं, आपके बच्चे यदि महान योगी बनकर संसार में आने वाले युवकों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो बी विद देम, उनके साथ हो जाओ, उन्हें कोऑपरेट करो, ये आपकी भी बहुत महानता होगी।
जी 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 जी। चलिए बेटा जी, आपके इस सुंदर आह्वान के साथ ही अंत कर रहे हैं आज की इस कड़ी की। उम्मीद करते हैं कि सभी माता पिता बड़े अपने बच्चों को यदि इस पथ पे वो चलते हैं तो जरूर कोऑपरेट करेंगे, उन्हें इनकरेज करेंगे और किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितनी सुंदर चर्चा रही है ना, सेवा, साधना, सत्संग, शब्द ही कितने पॉजिटिव हैं, कितने अच्छे लगते हैं। किसी को भारी लग सकते हैं कि बड़े भारी भारी से शब्द हैं, लेकिन कितने मन को सुकून और राहत देने वाले हैं। तो प्रश्न पे मैंने आपको छोड़ा था, पूरी चर्चा सुंदर प्रकाश भ्राता जी ने हमें दी ही है, आपने भी चिंतन किया होगा। गुरु जी का उत्तर ये था जब उनके शिष्य ने पूछा कि मृत्यु सबकी होनी है तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों, एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया उनके गुरु जी ने, कहा कि देखो जो बिल्ली है ना अपने दांत से जब चूहे को पकड़ती है तो उसको पकड़ लेती है और मार भी देती है, उसे खा भी लेती है। कितनी तकलीफ होती होगी चूहे को तुम समझ सकते हो। लेकिन जब वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसके गर्दन को भी पकड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत ही नाजुकता से ले जाती है, किसी प्रकार की तकलीफ वो बच्चे को नहीं होने देती। बिल्ली भी वही है, दांत भी वही हैं, लेकिन परिणाम दोनों का अलग अलग है। ठीक वही होता है इंसान के साथ भी, जो केवल मौज मस्ती में लगे हुए हैं, बेईमानी भरा जीवन जी रहे हैं या संसार को लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, उनका अंत बहुत दयनीय होता है, ये देख सकते हो तुम। लेकिन जो प्रभु के ध्यान में रहते हैं, जो सेवा में है, सत्संग में है, साधना में है, जो परोपकार भरा जीवन जीते हैं, उनका अंत भी अर्थात मृत्यु भी बहुत सुखद होती है। और साथ ही मृत्यु तो मृत्यु, लेकिन पूरे जीवन भी वो संपूर्ण आनंद के साथ जीते हैं, सबकी दुआएं लेते हुए जीते हैं। तो जिनका जीवन भी सुखद है, मृत्यु भी सुखद है, उनका आने वाला जो कल है, समय है, वो भी कितना सुखद होगा, इस चीज को तुम समझ सकते हो। तो वास्तव मित्रों, ये जो चीजें हैं ना, जो हमारी संस्कृति में शामिल रहे हैं, सचमुच हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं, हमें श्रेष्ठता की ओर ले चलने वाले हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर ले चलने वाले हैं। आवश्यकता है इसे अपने जीवन में अब लाने की और साथ ही इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाने की। जरूर इस प्रकाश को पहुंचाइए दूसरों तक और साथ ही साथ बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां,
सारा ये जहां
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।